ओम शांति। हम सब ऊंचते ऊंच भगवान के बच्चे, ऊंच लक्ष्यधारी आत्माएं हैं। हम सब आत्माओं का लक्ष्य ही है बाप समान बनना। गीता में लिखा है कि भगवान कहता है कि ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है, परंतु योगी तो आत्मा तो जैसे मेरा ही स्वरूप है। तो योग हमें भगवान के समान बनाने की शक्ति देता है। भगवान की नॉलेज मिलती है, लेकिन नॉलेज को प्रैक्टिकल में लाने का बल मीठे बाबा की याद से ही मिलता है। हम ब्राह्मण आत्माओं को बाप समान बनने में एक तो पुरानी संस्कारों को परिवर्तन कर बाप समान बनाना है, दूसरा अपनी पास्ट के विकर्मों को भस्म करना है, क्योंकि बाप के पास कोई विकर्म का खाता नहीं है। तो समान बनने में ये दो बातें हैं, संस्कार बाप समान और विकर्म का खाता खत्म करना। इन दोनों में संस्कार परिवर्तन में योग की एकाग्रता बहुत मदद देती है। विकर्म विनाश करने में बाबा की याद भी है, सेवा भी है, दुआएं भी हैं, ये सब खाता खत्म करने में मदद देती है। लेकिन संस्कार परिवर्तन में जब तक आत्मा बाप के साथ कुछ समय तक एकाग्र नहीं रहेगी, तब तक अपना ओरिजिनल स्वरूप का आत्मा को अनुभव नहीं होगा। जब ओरिजिनल स्वरूप आत्मा अनुभव कर लेती है, तो वो अनुभव साकार कर्म क्षेत्र पर प्रैक्टिकल में दिखाई पड़ता है, और वो अपनी चीज है। इसलिए जो पूर्व संस्कार हैं, रावण के संस्कार हैं, उससे स्वतः ही नफरत आ जाती है, घृणा आ जाती है। अगर कहीं बाई चांस संकल्प या बोल में आ भी जाए तो तुरंत परिवर्तन करने का संकल्प आ जाता है। तो हम सब बाबा के बच्चे योग तो लगाते हैं, लेकिन योग में एकाग्रता नहीं रहती है। एकाग्रता का आधार है, जैसे हम सब जब शुरू में आए तो बताया गया कि इस योगी जीवन के चार स्तंभ हैं, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दिव्य गुण, सत्संग। ऐसे एकाग्रता के लिए छह स्तंभ हैं। जब वो छह बातें हम आत्माएं अभ्यास करके प्रैक्टिकल में ले आएंगी, तब एकाग्र रह सकेंगी। वो छह बातें हैं। पहली है अंतर्मुखता, दूसरा है एकांत प्रिय, तीसरा है एक नामी, चौथा है एकानामी, पांचवा है बाप में ही संसार है, अर्थात बाप के द्वारा सर्व प्राप्ति करना, और छठा है एक आस, एक बल, एक भरोसा। यह जब छह बातें हमारी पक्की हों तो हम एकाग्र रह सकते हैं। अगर इन छह बातों में कमी है तो एकाग्रता में भी कमी हो जाएगी। अगर एकाग्रता में कमी है तो आपके द्वारा किए हुए योग से शक्ति नहीं प्रकट होगी। जो शक्ति काम करे, संस्कार को परिवर्तन कर दे, पूर्व संस्कार को जला दे, वो नहीं हो पाएगा। तो एकाग्रता में पहली बात है अंतर्मुखता। अंतर्मुखता का दो अर्थ है, एक है अंतर अर्थात भेद करना, दोनों में क्या अंतर है, और दूसरा अंतर्मुखता अर्थात जो अंदर आत्मा है उसकी तरफ मुख अर्थात ध्यान हो। तो बाहर मुखता और अंतर मुखता, इन दोनों का कंट्रोल कंट्रास्ट अगर करते रहो स्वयं में कि बाहर मुक्ता से आत्मा को कितना नुकसान है और अंतर्मुखता से कितनी प्राप्ति है, अगर यह अंतर आप करते रहो तो अंतर्मुखी बनने में आपको यह पॉइंट बहुत मदद देगी। जैसे बाबा कहता है अंतर्मुखी, आगे क्या कहता है, अंतर्मुखी सदा अति इंद्रिय सुखी। तो देखो अंतर्मुख में सदा मुझे आत्मा को अति इंद्रिय सुख मिल रहा है, बाहर मुक्ता में बाहर की इंद्रियों का सुख है जिसको देह भान कहते हैं, नुकसान है। और अंतर्मुखता में देह भान की इंद्रियों से परे आत्मक स्वरूप की स्थिति के द्वारा परमात्मा से सुख प्राप्त करना, इसको अति इंद्रिय सुख कहते। तो एक तो कंट्रास्ट करो, दूसरा अंतर्मुखी अर्थात जो अंदर आत्मा है उस आत्मा की तरफ अटेंशन दो कि आत्मा का कल्याण कैसे होगा, उसके बारे में सोचो। आत्मा का कल्याण है ही आत्मक दृष्टि रखने से, आत्मा का कल्याण है ही बाबा के श्री मत पर चलने से, आत्मा का कल्याण है ही ईश्वरीय सेवा करने से, अर्थात बाप और बाप के द्वारा दिए हुए ज्ञान के बारे में सोचना ही अंतर्मुखता है। ऐसे अंतर्मुखी बाहर के वायुमंडल से सेफ हो जाते, ऐसे अंतर्मुखी को अंडरग्राउंड कहा जाता है। जैसे लौकिक दुनिया में अंडरग्राउंड जो चले जाते हैं, बाहर से सेफ हो जाते हैं, ऐसे अंतर्मुखता वाली आत्मा बाहर के वायुमंडल अर्थात माया के वायुमंडल से, ये रावण का राज्य चल रहा है इसके वायुमंडल से सेफ रहते। तो पहले देखो कि हम आत्माएं अंतर्मुखी हैं, अटेंशन इस पर। दूसरी बात है एकांत प्रिय, एकांत प्रिय का यह अर्थ नहीं है कि सब काम धंधा छोड़कर सबसे किनारा करके एक जगह जाकर बैठ जाओ, ये नहीं अर्थ है। एकांत का अर्थ है, अंत का अर्थ है उसके आगे और कुछ है ही नहीं। तो एकांत अर्थात एक बाप के आगे और कोई चीज है ही नहीं, इसको कहा जाता है एकांत। बाप कहाँ रहता है, बाप का कर्तव्य क्या है, बाप का रूप क्या है, बाप का गुण क्या है, ऐसे बाप के बारे में सोचते रहना, बाप से जो सुना है वही सुनाना है, जो बोला है वही बोलना है, इसके बारे में ही सोचना और करना, इसको कहा जाता है एकांत प्रिय। समय मिलता है जरूर सबसे न्यारे बनकर एकांत में बैठकर अशरीरी होने का अभ्यास करो, वो भी अच्छा है। लेकिन हम सब कर्म योगी हैं, कर्म क्षेत्र पर हैं, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। संसार के बीच में रहना ही पड़ेगा, लेकिन यह सब करते हुए एकांत में रहे। कईयों को एकांत बड़ा मुश्किल लगता है। किसी दिन भट्टी हो, जिस दिन बोला जाता मौन रखो, उस दिन जैसे उन्हें धर्मराज की सजा मिल जाती, मुश्किल हो जाता है चुप होना, बड़ी मुश्किल से स्वयं को कंट्रोल कर पाते हैं बाड़ी से परे रहने में। कईयों को संगठन में हंसना बहलना बोलना ये ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसे लोग एकांत प्रिय नहीं हो सकते। देखो, आत्मा एकांत प्रिय है, आत्मक स्वरूप में आओ तो ना शरीर है, ना शरीर से संबंधित कोई चीज है, बस आत्मा है और आत्मा का संसार परम आत्मा है, उससे सब कुछ लो, एकांत प्रिय बनो। तीसरा है एक नामी बनो। एक नामी का अर्थ है आपके अंदर हर श्वास में, हर संकल्प में एक का ही नाम हो, जिसको बाबा कहता है आपका अजपा जाप चलता रहे, एक नामी, दूसरा एक नामी का अर्थ है कि यह अंदर से पूरा अटेंशन हो कि हमारे हर कर्म इंद्रियों से वो एक का ही नाम दिखाई पड़े, अर्थात एक बाबा दिखाई पड़े। ऐसा ना अनुभव हो कि यह भाई ऐसा है या ये बहन ऐसी है, लेकिन महसूस हो कि यह भाई अथवा बहन देही भान से न्यारी है, अलौकिक है। आप में बाप दिखाई पड़े यह अटेंशन चाहिए। जरा सा भी यह संकल्प ना आए कि मेरा नाम हो या मेरा शान हो, कुछ भी नहीं, बस बाबा बाबा बाबा। स्वयं को इतना मिटा दो कि जैसे कुछ है ही नहीं, बस मेरी जगह बाबा है। इतना एक नामी बन जाओ, एक का ही नाम हो मेरे द्वारा और मेरे मन बुद्धि या मुख पर एक का ही नाम हो, मीठा बाबा, मीठा बाबा। बाबा मुझको कितना श्रेष्ठ बनाया, कितना महान बनाया, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, बनाने वाले मीठा बाबा वाह। ऐसे दिल से बाबा के प्रति दिल का प्यार उत्पन्न हो तो एक नामी स्वतः बन जाए। इसके बाद है एका नामी। एका नामी का ये अर्थ नहीं है कि खर्च ही नहीं करना है, खूब खर्चा करो, लेकिन व्यर्थ से एका नामी। खर्चा आपको खूब करना है, संकल्पों का भी, स्थूल धन का भी, बोल का भी, लेकिन किस प्रकार से करना है वो बताते हैं। अभी चलो बाबा के पास। हम सब आत्माओं को एका नामी का अवतार बनना है, लेकिन बाबा कहता है सफल करो और सफलता लो। तो हमें सफल भी करना है लेकिन एका नामी करना है व्यर्थ की बचत से, व्यर्थ से स्वयं को बचाओ। एका नामी का अर्थ है कि जो बात आप 10 शब्दों में कहकर सिद्ध कर सकते थे, एक शब्द के द्वारा सिद्ध कर दो। जो काम आप 10 बार बोलते थे, एक बार की बोल से वो काम हो जाए, इसका आधार है आपकी पावरफुल स्थिति। अगर आप आत्मक स्वरूप में स्थित हैं और बाप की याद में हैं, तो आपका संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। वो बोल आपका अवश्य काम करेगा। ये ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी कि मन मना भाव की विधि से अपने हर संकल्प को श्रेष्ठ बनाया, सिद्धि स्वरूप बनाया। जैसे लौकिक दुनिया में जब कोई स्थूल युद्ध में जब कोई स्पेशल अस्त्र शस्त्र यूज करते थे, शास्त्रों में दिखाया है, तो उसको यूज करने का कुछ विशेष मंत्र होता था। जिस मंत्र का आवाहन करके उस शस्त्र को अगर छोड़ते थे तो वो काम अवश्य करता था। तो ऐसे ही आपका जो भी बोल हो या संकल्प हो, अगर आप बाबा की याद में स्थित हो करके बोलेंगे या करेंगे तो अवश्य सिद्ध होगा। लेकिन बोल में या संकल्प को सिद्ध कराने में एक बात अवश्य चाहिए, वो है निःस्वार्थपन की भावना और शुभ कामना। अगर संकल्प में निःस्वार्थपन की भावना नहीं है, सिर्फ शुभ कामना ही है, तो भी आपका संकल्प जल्दी सिद्ध नहीं होगा, वो बोल जल्दी काम नहीं करेगा। उदाहरण के रूप से मान लो आपके पास
کوئی وی آئی پی آتا ہے یا آپ کسی کی سیوا کرنے جاتے ہیں تو آپ کے من میں یہ سنکلپ رہتا ہے کہ اگر یہ بھائی یا بہن جان میں چل پڑے تو اس سے یہ بڑی سیوا ہوگی۔ اور اسپشٹ مان لو آپ سمجھتے ہیں کوئی بڑا سیٹھ جان میں چل پڑے تو اس سے کافی مدد ملے گی یگ کی سیوا کی۔ اب ہے آپ کی شبھ کامنا لیکن اس میں سوارتھ سمایا ہے، یہ سدھ نہیں ہوگا جلدی۔ بہت سمے کے بعد سدھ ہوگا۔ آپ کے اندر سیوا کے سمے یہ بھاونا ہو کہ اس آتما کا کلیان ہو جائے، یہ آتما بھی بابا سے برسا لے لے، باپ کا انن بچہ بن جائے، بابا کا رائٹ ہینڈ بچہ بن جائے، یہ شبھ سنکلپ رکھو۔ جب بچہ بن جائے گا وہ اپنے آپ ہی سب کچھ کرے گا، لیکن جو ہم آس رکھ لیتے ہیں ایسا ہو تو ایسا ہوگا، یہ سفلتا نہیں دی۔ جیسے ایک بار مدھوبن میں راجیو گاندھی آیا تھا، اس سمے پرائم منسٹر سیت نہیں تھایا تھا، تو جب آیا اور گیا تو بابا نے کہا تھا اس کو آپ لوگوں نے پرائم منسٹر کی درشٹی سے دیکھا تھا یا آتمک بھاؤ سے دیکھا تھا؟ اگر پرائم منسٹر کی درشٹی سے دیکھ کر ایسا سوچ کر ویوہار کیا ہوگا تو اس کو اتنی پراپتی نہیں ہوئی ہوگی۔ اگر آتما سمجھ کر دیکھا ہوگا تو اس کو کافی پراپتی ہوئی ہوگی۔ تو اس میں ہمیں ایکا نامی کا اوتار بننے میں سمرتھ اس स्थिति बहुत मदद देती है। अगर स्थिति समर्थ नहीं है तो एका नामी का अवतार बन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको सेवा भी करनी है, अपनी ऊंची स्थिति भी बनानी है। अब अगर ऊंची स्थिति में स्थित नहीं है तो कितनी बार आपको बार बार वो संकल्प करके वहां तक जाना पड़ेगा। और अगर ऊंची स्थिति है तो एक या दो ही संकल्प में उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। समय की बचत, श्वास की बचत, संकल्प की बचत, सब की बचत हो जाएगी। लेकिन अगर स्थिति ऊंची नहीं है, आत्मक स्वरूप की स्थिति और बाप की याद उसमें नहीं समाई है तो ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा हर एक चीज में। इसलिए एका नामी का अवतार बनने के लिए विशेष अटेंशन दो कि आपके हर संकल्प में बाप की याद समाई हो। जैसे लौकिक में कहते हैं कि राम का बाण खाली नहीं जाता था, ऐसे जो संकल्प राममय अर्थात बाप की याद में स्थित होकर उठाया है वो संकल्प खाली जा नहीं सकता, उसके लिए ज्यादा मेहनत या खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो एका नामी का अवतार बनने के लिए अटेंशन इसी बात का कि आत्मक स्थिति बाप की याद और इसके साथ निस्वार्थ भावना और शुभ कामना, तब आप एका नामी का अवतार बन सकते हैं। इसके बाद है, एक ही मेरा संसार है अर्थात एक में अपना संसार देखो। संसार में दो चीज है, व्यक्ति और वैभव। जो सुख व्यक्ति से मिलता है वो सुख बाप से लो, जो सुख वस्तु से मिलता है वो सुख वस्तु को यूज करते हुए बाप की याद में रहकर वस्तु का सुख लो। अगर वस्तु नहीं है और बाप की याद है तो जो आवश्यकता है वो वस्तु आ भी जाएगी। कोई भी बाप ऐसा है ही नहीं जो अपने बच्चे को दुखी देख सके। आपका कर्म का खाता है राइट है, लेकिन बाप समर्थ है, सब कुछ कर सकता है, सिर्फ एक चीज चाहिए। अगर इस ब्राह्मण जीवन में किसी को किसी भी प्रकार की कमी है, किसी भी प्रकार की कमी है, उसका कारण है आपने अभी तक उस चीज को आप जितना कर सकते हैं भगवान के प्रति किया नहीं है। इस कारण से भगवान आपको दे नहीं पा रहा है। बाबा देना चाहता है लेकिन दे नहीं पा रहा है। एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। आप लोगों ने कृष्ण और सुदामा की कहानी सुनी है। दोनों गहरे मित्र थे और श्री कृष्ण सुदामा में अंतर इतना था कि सुदामा अति गरीब और श्री कृष्ण अति अमीर। श्री कृष्ण ये जानता था कि सुदामा की दशा बहुत खराब है, ये उसे महसूस भी होता था, जानता था, और श्री कृष्ण के पास अथाह धन था, वो सुदामा को दे सकता था, लेकिन क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? दे सकता था, सक्षम था, लेकिन नहीं दिया। जब तक दो मुट्ठी चावल नहीं खाया तब तक कुछ दिया नहीं। दो मुट्ठी चावल भी देखो, ऐसा शास्त्रों में बताते हैं कि सुदामा के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, पड़ोस वालों से मांग कर लाकर दिया था, ले जाओ। तो भगवान भी ईश्वरीय नियम में बंधा है, अगर वो बिना दिए ही दे दे तो फिर तो कर्म फिलॉसफी ही समाप्त हो जाए। इसलिए बिना दिए दे नहीं सकता है। देना किसे कहा जाता है? आप लोग तो सोच रहे होंगे, हम तो बाबा के घर में दे ही रहे हैं, तन से सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन देना किसे कहा जाता है? एक उदाहरण बताते हैं कि बाबा कहता है अगर इस प्रकार से दो तो अभी ब्राह्मण जीवन में आपको जो चीज चाहिए सब मिलेगा, फल हिसाब किताब है तो बाप खत्म कर देगा। हो सकता है खत्म हो सकता है? बाबा के शब्द याद करो, बाबा कहता है अगर किसी के ऊपर साहब राजी तो उसका क्या करेगा धर्मराज काजी। सोचो, अगर बाप राजी है तो क्या नहीं कर सकता है। लेकिन जितना हो सकता है उतना करो। हो सकने का एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लो आपके पास अभी जितना धन है, जैसा तन है, जो भी है, आप कर रहे हो, अब इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो, एक पैसा भी नहीं बचता है। प्रश्न है, मान लो आपके घर में 5 मेंबर थे और उनका खर्चा जैसे तैसे मुश्किल से चल रहा था और आप कुछ नई बाबा के घर में कर सकते थे, लेकिन बाबा पूछता है कि अगर 5 के अलावा अगर एक छठा जन्म ले ले तो पालोगे या मार डालोगे? पालेंगे ना, तो कहां से उसके लिए आ गया? जब उसके लिए आ सकता है तो मीठे बाबा के लिए क्यों नहीं निकल सकता? अगर इस विधि से निकालो, देखो अभी ये ब्राह्मण जीवन विधि है, उस विधि से सिद्धि मिलेगी। तो नहीं है तो देगा, अगर है तो कैसे यूज करो? फल आपके पास धन है, खूब आराम से रहो, खूब सेवा करो। बाबा कहता ब्राह्मण जन्म है, रूहानी मौज करने का युग, लेकिन किस विधि से? जैसे यादगार रामायण में दिखाते हैं, जब राम लंका जीतकर वापस आए, राजगद्दी पर बैठे तो सबको प्राइस दी गई, हनुमान जी को कुछ नहीं मिला था। तो सीता जी ने अपना हीरा मोती का जो बहुमूल्य हार था वो दे दिया हनुमान जी को। हनुमान जी ने सारा हार देखा और देख करके फिर एक एक मोती हीरे के दाने को दांत से तोड़कर देख देख कर फेंकते गए। सबने कहा क्या कर रहे हो? तो बोला कुछ नहीं, मैं तो इसमें देख रहा था कहीं राम जी का फोटो नहीं दिखाई दे रहा। तो जिस चीज में राम का फोटो ही नहीं है वो मेरे काम का नहीं। हम ब्राह्मण आत्माएं भी चाहे सोना है, चाहे हीरा है, चाहे लोहा है, कुछ भी है, जिस चीज में बाबा की याद आती है, जिस चीज से बाबा की सेवा होती है, खूब खाओ, खूब यूज करो। और जिस चीज से बाबा की याद ही नहीं आती, वो चाहे हीरा मोती हो, वो मेरे काम का नहीं। जिस चीज में बाप की याद नहीं वो मेरे काम की नहीं। यह यूज करने की विधि अपनाओ। जैसे देखो, आपने देखा होगा कई बैच पहनते हैं, चाहे कोई सोने का, कोई कुछ, कोई कुछ पहनता, इसीलिए बाबा की याद आए। है तो खूब पहनो, लेकिन बाबा की याद आए तो। अगर याद खिसकती है तो वो फिर माया बन जाएगी, उसको नहीं यूज करो। और इसके बाद है एक आस एक बल एक भरोसा। बहुत सुंदर बात है, एक की ही आस हो, एक की ही आस हो और एक के ही बल में भरोसा हो। बहुत समझने की चीज है, एक की ही आस हो।
आपके अंदर जो भी आशय जिसको बाबा कहता है चिंता थी पार ब्रह्म परमेश्वर की, उसको पा लिया, अब और क्या बाकी रहा, किस चीज की और इच्छा है। तो एक की ही आस रहे और एक से ही सर्व कुछ प्राप्त करने की भी आस रहे। किसी देहधारी से कुछ लेने की आस न रहे, एक से ही सब कुछ लेने की आस रहे और एक के ही बल का भरोसा हो, ना किसी भाई के, ना किसी बहन के, ना धन के, ना अपने शरीर के, किसी के भी बल का कोई भरोसा नहीं, बस एक के ही बल का भरोसा हो। ऐसी आत्माएं एकाग्रता के मंजिल पर बढ़ सकती हैं। चेक करो, ये छह चीजें हैं, अगर नहीं हैं तो अपने में लाओ। जब ये छह बातें आ जाएंगी तब आप एकाग्रता के मंजिल पर बढ़ सकते हो। ये है नींव, फाउंडेशन, यह पक्के हैं तो एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी। एकाग्रता में भी तीन स्टेजेस हैं। एकाग्रता में पहली है एकाग्र होना, दूसरा है एकाग्र चित बनना और तीसरा है एक टिक, बस एक बाप में टिक जाना। ये तीन स्टेजेस एकाग्रता की। पहली बात है एकाग्र होना। एकाग्र होने का अर्थ है सदा स्वयं को बाप के आगे सदा रखो या बाप के आगे सदा रहो। चाहे स्वयं को बाप के आगे सदा रखो, चाहे बाप को स्वयं सदा आगे रखो, अर्थात चाहे बाबा की याद के कर्तव्य के आधार से बाप की याद रहे, चाहे बाबा के गुणों के आधार से बाप की याद रहे, चाहे बाबा ने जो मुझ आत्मा पर इतना उपकार किया है उस स्मृति से बाप की याद रहे, या बाबा हमको खिला रहा है इस स्मृति से याद रहे, किसी भी रीति से, चाहे बाबा टीचर बन करके हमको क्या पढ़ाया है उस पढ़ाई की स्मृति से बाप याद रहे, सतगुरु के रूप से क्या वरदान दिया है उस रूप से याद रहे, किसी भी रीति से बाप के आगे रहो या बाप आपके आगे रहे, यह एकाग्र हो जाओ। ये एकाग्रता जब इस प्रकार की एकाग्रता आ जाएगी, फिर इससे आप ऊपर चलेंगे एकाग्र चित्त। एकाग्र चित्त का अर्थ है कि कई बातें हमारे चित्त में समाई हुई है, जो वर्तमान समय नहीं दिख रही हैं या स्मृति में हैं, लेकिन यकायक याद आ जाती है। तो जो यकायक याद आ जाती हैं या कर्म में आ जाती हैं, बोल में यकायक आ जाती हैं, ये हमारी वृत्ति में भरा हुआ है। वृत्ति में कैसे भरता है? मान लो आपके सामने अभी कोई घटना घटी है, आपने उसको पहले देखा सुना, थोड़ा चिंतन चला, उसके बाद आपने डोंट केयर कर दिया, दूसरी सेवा में दूसरी बातों में लग गए, वो भूल गए, लेकिन आपकी वो पॉइंट वृत्ति में हिसाब किताब के आधार से रह गई। कभी न कभी जब वैसा वायुमंडल आएगा जिस बात के कारण वो वृत्ति बनी थी, वो स्मृति में आ जाएगी और आपकी एकाग्रता को तोड़ देगी। तो जब आप स्वयं को सदा बाप के आगे रखने का अभ्यास करेंगे, इस अभ्यास से आपके चित्त में भी जो बातें हैं वो खत्म हो जाएंगी और आत्मा एकदम प्योर होकर बाबा के पास बाप की याद में टिक जाएगी। जितनी देर चाहो टिके रहो, वहीं बैठे रहो, कुछ हिसाब किताब ही नहीं जो नीचे का संकल्प आए भी, ऐसी एक टिक अवस्था बाप समान बहुत जल्दी बना देगी। सब हिसाब किताब खत्म करा देगी जो बाबा चाहता है। तो इस प्रकार योग की एकाग्रता से स्वयं को बाप समान सहज बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।